रागमालकोश जो है अत्यंत प्राचीन राग है। जहाँ तक जो प्रश्न है जो कौन सा अंग क्या है जो वर्तमान में है, आज के 500 वर्ष पहले क्या था, ये तो इस समय कोई नहीं कह सकता। मगर मालकोश का जो इस समय रूप है वो बहुत दिन से संगीत समाज में स्थिर है। उसके अनुसार जो कौन सा अंग है मालकोश का, दो स्वर समूह वो यह है, सा गा मा गा सा। और दूसरा उत्तरांग वाला रे नी सा नी धा मा। यही दोनों स्वर समूह है। इसके अतिरिक्त सा नी गा सा तो उसे विस्तार हो जाता। मुख्य जो रागांग बात स्वर समूह है सा गा मा गा सा। ये गता की मीड़ और कोमल गंधार मध्यम का बहुत सा गा मा गा सा। इसी तरह उत्तरांग में, परंतु दोनों क्षेत्र में, पूर्वांग क्षेत्र में तो सरज पर आकर के न्यास होता है मध्यम को दीर्घ करके, उत्तरांग क्षेत्र में मध्यम पर न्यास आ जाता है सा गा मा। जो स्थिति गाता की है वही स्थिति उत्तरांग में थामा की है। तो यही दोनों स्वर समूह जो है मालकोश राग के रागांग को व्यक्त करते हैं। अब रही बात जो इन स्वर समूहों में रागों का मिश्रण करके या इनको अन्य रागों में मिला करके, जब अन्य राग का इसमें मिश्रण हो जाता है तो कौन से अंग का राग बनता है, यानी मालकोश अंग का राग बनता है। और जब ये कहीं दूसरे राग में मिल गए तो वहाँ मिश्रण के स्थान पर इस्तेमाल होता है। अब रही बात जो रागांग राग मालकोश का प्रकार कौन कौन सा है, जैसे सा गा गा नी सा गा सा गा गा मा पा बा नी सा नी पा मा बा नी पा मा बा गा नी गा सा। इसमें केवल निशा गसा मालकोश है, बाकी तीर मध्यम से और कोमल निषाद से अलग दर्शन होता है। मधु कौन सा नाम है, कौन सी राग का प्रकार माना जाता है, मालकोश राग का प्रकार माना जाता है। इसी तरह दंड कौन, जोग कौन इत्यादि, ये मालकोश के प्रकार माने जाते हैं। और न्यास की बात ये है कि मालकोश तो ऐसा राग है जो पांचों स्वर पर न्यास होता है, स्वर की तो कोई बात नहीं। गंधार मध्यम, मध्यम तो वादी ही स्वर है, गंधार मध्यम धैवत निषाद ये सभी स्वर पर न्यास होता है। और इस न्यास के कारण ही पांच सुर का राग होते हुए भी बहुत बड़ा राग माना जाता है। बहुत बड़ा राग माना नहीं जाता, बहुत बड़ा राग है ही है। अब इसका विस्तार या गायन या वादन कम या ज्यादा ये तो कलाकार के स्तर पर निर्भर करता है, जो उसकी कैपेसिटी कितनी है। जितनी कैपेसिटी अधिक होगी, क्षमता अधिक होगी, तपस्या अधिक होगी, उतना ही इस राग को समझ पाएगा। इस राग की एक विशेषता ये भी है, जो साधारण से साधारण कलाकार है तो उसको भी बहुत प्रिय है, उसके लिए भी बड़ा सरल है। उसके विपरीत जो बड़ा से बड़ा कलाकार है उसको प्रिय तो है ही है, परंतु उसके लिए भी उतना ही कठिन है। कई जन्म गाएगा तो भी मालकोश का पार नहीं पाएगा। तो इसलिए मालकोश राग की विशेषता ये है, जो साधारण लोगों के लिए साधारण और विशेष लोगों के लिए विशेष, इसका स्वरूप सामने आता है। ये इतना बड़ा राग कोई प्रचार में है ही नहीं है, जिसके हर एक सुर से संबंध है। यदि तोड़ी गाया जाए तो तोड़ी भी बहुत बड़ा राग, उसमें न्यास के स्वर बहुत है, परंतु मालकोश का मुकाबला नहीं कर सकता, न यमन न तोड़ी न कोई अन्य राग। बड़ा कलाकार को मालकोश अवश्य तैयार होगा। इतना मधुर राग सर्वसाधारण को कर्ण प्रिय, बड़े विद्वान को कर्ण प्रिय, बड़े कलाकार को प्रिय, बड़े कलाकार के लिए कठिन, साधारण से साधारण लोगों के लिए सरल, ये विशेषता अन्य किसी राग में नहीं है, किसी राग में नहीं है। ऐसे बहुत से कलाकार हैं हिंदुस्तान में अच्छे, जिनके कंठ से यमन मधुर नहीं होता था, लोग मालकोश चुनते थे, दरबारी चुनते थे। किसी के कंठ से यमन नहीं होता था, दरबारी चुनते थे। परंतु मालकोश तो ऐसा राग है जो कोई कलाकार उससे अछूता नहीं रह जाता अपने पूरे सांगीतिक जीवन काल में।